सुल्तान फातिह का नाम सुना होगा आपने, एक ऐसे जगह पे फंस के किस बहरी बेड़ा था और समंदर खत्म, 7 मील तक बहरी जहाज को खुश्की पे दौड़ाते हुए चले गए। इनको क्या लगे, वो कहते हैं हम कट जाएंगे, हमने कौन सा कोई फतह करना है, हम अल्लाह को बताना चाहते हैं कि हम साबिकून अल अव्वलून है। जंगे यरमूक के किस्से पढ़ लीजिए, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी आपके सामने खुल के आ जाएगी। कहाँ 60,000 लोगों के लश्कर का मुकाबला एक जंग में, कहते हैं मैं इनको मजा चखाऊंगा। क्या करते हैं, पूरी कौंसिल बैठी, वॉर कौंसिल, कितने लोग जाएं। खालिद कहने लगे 30 लोग दे दो बस मुझे, 30 लोग 60,000 के मुकाबले में। हैरत हुई, और इससे भी बड़ी हैरत आपको उस कौंसिल के लीडर्स की बात सुन के होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं खालिद, 30 बहुत थोड़े हैं, अच्छा आप ऐसा करो आप 60 ले जाओ। ये उससे भी, ये है साबिकुन साबिकुन। और आज भी आसमान तरस रहा है और आज भी जमीन रास्ता देख रही है ऐसे जियालों का, और आएंगे इंशाल्लाह। अब मस्जिदों में नमाजियों में सफेद दाढ़ियों वालों से ज्यादा काली दाढ़ियों वाले हैं, अब जवान खून फिर भड़क रहा है। और वो एक शेर भी है ना कि जब जवानों में रुख पैदा होती है उनको अपनी मंजर आसमानों में दिखती है। दुआ कीजिए कि आज के जवान उठ जाएं, आज तउस और रबाब आखिर हो जाए, उनके हाथों में से निकल जाएं ये गिटार और पियानो, और इसकी जगह उनकी जिंदगी में अल्लाह सुबहाना ताला की मोहब्बत आ जाए। आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, तउस और रबाब आखिर शमशीरों सना अव्वल। हमने तो इन लफ्ज़ों को बैन कर दिया, हमने क्या जीतना है। तो बात यह है कि हर बंदा अपने हालात और अपने माहौल के मुताबिक अस्साबिकून अलव्वलून में होगा, कोई मैदान जंग में, कोई खानदान के जंग में। आप दीन पे आती हैं, आपके आंसू ही नहीं रुकते। सास मुझे टेढ़ी नजर से देख रही हैं, बहू मुझे ऐसे देखती हैं, बहन बदल गई, सहेलियां तो मुझे बुलाती नहीं, तो क्या परवाह है। अल्लाह कहते आओ, वही तो मुकर्रब लोग हैं, तुम्हें किसका कुर्ब चाहिए, उलाइकल मुकर्रबून। मेरा कुर्ब चाहते हो, आओ मैं तुम्हें दूंगा सब कुछ, फी जन्नात नईम, नेमतों वाली जन्नतों में वो होंगे। देखिए हम दुनिया को जन्नत बनाने के लिए ही अल्लाह के रास्तों में नहीं उठते ना, थोड़ा सा भी हमें कोई ऐसा काम करना पड़े जो दूसरे नहीं करते तो हमें उस वक्त मुश्किल क्या लग रहा होता है कि जिंदगी अजीरन होगी, तो पहली बात है नहीं होती। ये जुमला आज नोट करके जाइएगा, दिल की तख्तियों पे लिख लें कि आखिरत की जन्नत मिलने से पहले दुनिया की जन्नत मिलती है, पहले दुनिया आपकी जन्नत बनेगी। ये शुरू के कुछ दिन होते हैं सिर्फ, वो जब घर नया, आप इस घर को रेनोवेट करेंगे ना, कोने में एक कमरे में चले जाएंगे, आपके लिए वो दिन नासूर बन जाएंगे जब घर में मजदूर लगे होंगे। लेकिन कुछ दिन की मुश्किल के बाद जब ये घर खुला हो जाएगा, दीवारें टूट जाएंगी, चौड़ा होगा, तो आप इसी घर में इंजॉय करेंगे। हम एक बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में नई नई अल्लाह की बात आती है ना, और अल्लाह की बात अल्लाह की किताब से आती है, इसमें कोई शक नहीं। कोई ये ना कहे कि मैं आपको किताब की ही दावत दूंगी क्योंकि मेरा ताल्लुक किताब पढ़ने और पढ़ाने से है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। पूरे शऊर के साथ कहूंगी कि तब्दीली दिल में, ईमान बिल्ला, ईमान बिल आखिरा जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, ये आती ही किताब की बासाबता तालीम से है। वरना तो हमने लोगों ने तो क्यामत के नाम पे नावल बनाए हुए, फिल्में हैं, हीरोइनों को कहते हैं क्या क्यामत लग रही हो, और जब वो असल क्यामत आएगी तो लग पता जाएगा कि ये किसके दिल पे बिजली बन के गिरती है और इसकी चाल से किसके दिल पे क्यामत आती है। वल्लाही हम बहुत बेशऊर हैं क्यामत के मामले में। क्यामत का दिन तो इतना सख्त दिन है कि इंसानों को उलट पुलट कर रख देगा, ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर हो जाएंगी। कहीं वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून की पुकारें होंगी, कहीं अल्लाह एक मुजरिम से पुकारेगा क्या मैंने तुझे माल और औलाद ना दिया, क्या मैंने तुझे सवारी और घोड़ा ना दिया, तूने क्या काम किया। कहीं अल्लाह किसी को उसके गुनाह याद दिला रहा होगा कि बता क्या मुंह काला करके आया है, कहीं अल्लाह उसको उसके जिना दिखा रहा होगा। क़यामत का दिन उससे बहुत सख्त है जिसको हम समझे। तो तीन गिरोहों का तस्करा किया, मुकर्रबून पे बात आई, जन्नत नईम में होंगे, ये होंगे किन में, फरमाए सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अगलों में से तो बहुत से होंगे। अगले कौन, जो पहले दौर के लोग गुजर गए, अभी नबियों के करीब का दौर। इसके हम तफसीर नहीं कर रहे, सुनना चाहें तो इस पे एक अलग दर्स भी है, पूरी सूरत वाक्या को हमने तफसीर के अंदाज में हल्का फुल्का सा किया हुआ। इस वक्त हम इसको डे ऑफ जजमेंट से कर रहे हैं, तो मतलब ये कि हर नबी के आगाज के दौर में ये लोग बहुत होते हैं। अबू बकर सिद्दीक साबिकून अल अव्वलून में से थे, वो 10 अशरा मुबशरा साबिकून अल अव्वलून में से थे, वो 313 बदरी सहाबा साबिकून अल अव्वलून में थे, वो 1400 लोग जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के बैत रिजवान की थी वो साबिकून अल अव्वलून थे, और वो बहुत थे। लेकिन फरमाया कलीलुम मिनल आखरीन, पिछलों में ये थोड़े ही होंगे, अल्लाह हमें इनमें कर ले। आज हम पिछले हैं, हम थोड़े होते हुए ये करेंगे ना तो अल्लाह ताला हमें इनमें लाएगा। आज के दौर में थोड़ी सी नेकी करना उस दौर की बड़ी बड़ी नेकियों से ज्यादा वैल्यूएबल है। कैसे? आपको इसकी मिसाल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने टाउन में, आपके जेब में भी पैसे हैं, आपके घर में भी हैं, बैंक में भी हैं, आपको परवाही नहीं होती, कोई भी पैसा खर्च करें जाएं कुछ नहीं होता। लेकिन आप पहुंच गए एक महीना कहीं, समझे ऐसी जगह जाके जहां अपना पैसे मंगा सकते हैं ना रख सकते हैं। सफ़र में पैसे थोड़े हो जाते हैं ना अमूमन, और ख़ास तौर पे सफ़र के आखिर के दिन। वहाँ अगर आप 1-10 रुपये भी खर्च करेंगे तो सोच के करेंगे ना, तो फिर इंसान के पास थोड़ी पैसों में भी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि मैंने इसमें गुजारा करना है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, आज बहुत सारे लोग खराब काम करते हुए दिखेंगे आपको, नफ्स के पीछे भाग रहे हैं, तो इनमें आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे ना तो उसकी वैल्यू बहुत होगी अल्लाह की निगाहों में। जब सारे बिगड़ जाएं तो थोड़ा सा भी आप अच्छे हो जाएंगे तो आप अच्छे ही लगेंगे ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पिछलों में ये ज्यादा थे, बाद वालों में कम होंगे, और होंगे जरूर। याद रखिए, आज भी अबू बकर सिद्दीक आएंगे, आज के दौर में भी उमर फारूक है, आज भी अली और हजरत उस्मान गनी जैसे सही लोग मौजूद हैं, सिर्फ उनको ढूंढने की जरूरत है। तो मतलब क्या है, हम सब के लिए भी मैदान खोला है। अब यहाँ तक अल्लाह ताला ने इनकी बात बता के तीनों का तारुफ करा दिया। काम अच्छे करेंगे तो फिर ही इंसान वहाँ पहुँचेगा। दिल चाह रहा है कि साबिकून अलव्वलून पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत आपसे शेयर करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, जानते हो क़यामत के रोज़ कौन से लोग सबसे पहले पहुँच कर अल्लाह के साये में जगह पाएंगे? सोचिए, और क़यामत का दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा, ला ज़िल्ला, कोई साया नहीं सिवाय अल्लाह के अर्श का साया। लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हम होते ना तो फौरन बोलते, मैं ही होंगी शायद, ये मेरे ही खानदान के लोग, और वो शेख फैमिली होगी सारी। हम जहाँ खुद जाते हैं वहाँ हम फैमिली को भी लेके जाना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे कि जिनका हाल ये था कि जब इनके आगे हक पेश किया गया तो इन्होंने उसको कबूल किया। कोई कीलो काल नहीं की कि अच्छा जरा पहले किसी के अप्रूवल ले लूं, जरा मौलवी साहब से पूछ लूं कि ये मुझे चाहिए भी नहीं, करना भी है कि नहीं, फौरन कबूल कर लिया। कल कुफर पे थे तो इस्लाम कबूल कर लिया, और आज के दौर में हम कह लें कि इस्लाम थे और इस्लाम की कोई सच्ची दावत उनके पास आई तो उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा सोचेंगे, फौरन कहा अच्छा मैंने कबूल किया। हाँ, और जब इनसे हक मांगा गया तो उन्होंने अदा कर दिया, यानी हक अदा करने वाले अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। और दूसरों के मामले में इनका फैसला वही कुछ था जो उनका अपनी जात के मामले में था। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो आप देख लीजिए, करेक्टर जो होता है, किरदार मैटर करता है। क्यामत के दिन कोई अचानक फैसला नहीं होने वाला, वो सब कुछ दुनिया में लिखा जा रहा है। क्यामत का दिन तो सिर्फ डिक्लेरेशन डे है। बहरहाल, हम बात कर रहे थे साबिकून अलव्वलून की। अब अल्लाह ताला आगे उनकी क्या मेहमान नवाजी होगी अल्लाह ताला के यहाँ, उसका तज़किरा फरमाते हैं। अला सुरुरिम मौदूना मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, वो सोने की तारों से बुने हुए तख्तों पे बैठे होंगे, तकिया लगाए हुए एक दूसरे के बिलमुकाबिल। कैसा तस्वीर आता है? आप यहाँ से थोड़े से अपने इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करें, और कभी आपने किसी को कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह पे बैठे देखा हो, सोने चांदी का तख्त है, उस पर हीरे डायमंड्स लगे हैं, हम तो इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना। पहले दौर में बादशाह जो होते थे वो सोने चांदी के तख्तों पे बैठते थे, आज तो हमारा जो थोड़ा बहुत होता है वो भी लॉकरों की जीनत है, वो तो सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, क्योंकि पहले गोल्ड ज़्यादा था, पहले दौलत ज़्यादा थी, आजकल तो सब आर्टिफिशियल चीज़ें चलती हैं ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो सोने की तारों के बुने हुए तख्तों पर तकिया लगाए हुए आमने सामने बैठे होंगे। आमने सामने बैठना किस बात की दलील होती है? मोहब्बत की। हमें जिससे गिला होता है ना, हम उसको फेस नहीं करते, साइड से देख लेंगे, सामने नहीं देखते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वहाँ दिलों में कोई कीना और बुगज़ तो होगा नहीं, तो ये एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, और बहुत ही खूबसूरत महफिल तसव्वुर में आती है। और जब वो बैठे इतनी जगह पे होंगे तो क्या उनको कुछ सर्व भी किया जाएगा? फरमाए, यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, उनके बीच में वो लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे वो चक्कर लगा रहे होंगे सर्विंग के लिए। दुनिया में अमूमन आप देखिए, आप बड़े अच्छे से अच्छे होटल में भी जाओ ना, लेकिन बाद जो वेटर्स होते हैं उनका कोई ऐसा अमल होता है जो आपके मज़े को ख़राब कर देता है, उनकी गलत सर्विंग या चीज़ हाथ से गिर गई, आपके कपड़ों पे गिर जाएगी। और वेटर्स, चले वेटर्स छोड़िए, आज आप एयर होस्टेस की बात करें, जिनको बड़े तपाक से लोग देखते रहते हैं घंटा दो, उनकी उठने बैठने चाल चलन ढाल को कि कौन कैसी है और कैसी है। पिछले महीने मैं किसी ट्रिप पे थी तो वहाँ बीच में रास्ते में मेरे साथ जो बैठी, मैंने कहा मैंने आपको देखा हुआ है, तो कहती है आई एम एयर होस्टेस। वो खुद भी एयर होस्टेस थी, तो मैंने उसे बताया कि एक फ्लाइट में तुम थी एयर होस्टेस। तो मैंने उसे ऐसे ही अपनी आदत के मुताबिक पूछा क्या करते हैं, कैसे, क्या क्राइटेरियन है। तो उसमें उसने बताया कि फिजिकली अपेयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए एयर होस्टेस बनने के लिए, एज इतनी हो, आपकी हाइट इतनी हो, आपका फिगर अच्छा हो, क्योंकि दूसरा ने देखना जो होता है, तो फिर भद्दी शक्ल की और ऐसी होगी तो लोग, प्रोटोकॉल की बात है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत में जो लड़के इनके मेज़बान होंगे, जो इनकी मदद करेंगे, वो कौन से होंगे? विलदान, अब्दी लड़के होंगे। और बी अकवाबिम व अबारीक, शराबे चश्मा जारी से, लबरेज प्याले, वका सिम, कंटर और सागर लिए दौड़ते फिर रहे होंगे। शराब कौन सी है? ला युसद्दाउन अनहा वला युनजिफून, जिसे पीकर न उनका सर चकराएगा और न उनकी अकल में फतूर आएगा। जो लोग तो हकीकत में अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं ना, वो तो एंजॉय करेंगे इस बात को, और कुछ नेगेटिव होके सोचेंगे, देखा शराब जन्नत में पियेंगे तो यहाँ क्यों नहीं पी सकते, और शराब वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं, और कोई बात नहीं आज के दौर ये नहीं वो नहीं। तो ये इस वक्त मौका ही नहीं है सोचने का। ये सोचिए कि अल्लाह ने उसकी खूबी क्या बताई कि ना सर चकराएगा ना अकल में फतूर आएगा। और दूसरी बात जहन में रखिएगा कि शराब का लफ्ज़ अरबी जुबान में पीने वाली चीज़, मशरूब, ड्रिंक, आप कोई भी ड्रिंक लेते हैं, शरीबा यशरबू, मशरूब जो आप, मशरूब, शरबत, ये सारे एक ही खानदान के लफ्ज़ हैं। तो लिहाजा इससे उस शराब पे कयास ना कीजिएगा जो कि दुनिया में ये सारी कबाखते लिए हुए होती है। फिर उसके बाद वफा की हतिन और फल होंगे, मिम यतखय्यरून, वो फल होंगे जिनमें से वो चुन के खाएंगे। फल की एक बहुत ही खूबी है कि जिसके सामने भी आप पेश करें ना, वो ढूंढता है बड़ा दाना कौन सा, सख्त कौन सा। खास तौर पे आप कभी किसी को अंगूर खाते देखें, शुरू में सब मोटे मोटे सख्त अंगूर खत्म हो जाते हैं, फिर अखीर में वो गिले गले टेढ़े मेढ़े, फिर वो, फिर माएँ कहती हैं खाओ अब इसको, आप तो नहीं कहती, अब तो माएँ डस्टबिन में फेंक देती हैं। पहले अकलमंद माएँ होती थी ज्यादा, आज भी हैं, माइंड ना करें। आदत है इंसान की कि चुन के खाना चाहता है फल ना। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उनको फल दिया जाएगा, बल्कि कहा ऐसे फल होंगे जिसमें से वो खुद चूज करेंगे। हाँ, वलहमि तैरि मिम्मा यश्तहून, और ऐसे परिंदों का गोश्त जिनको वो खाना पसंद करेंगे। शायद ही हम में से किसी ने कोई परिंदे का गोश्त खाया हो, लेकिन आपने सुना होगा चिड़ियों का गोश्त या जो बर्ड्स होते हैं बहुत महंगा होता है। कबूतर टेस्टी भी बहुत होता है, लाइट भी होता है, और सबसे कीमती गोश्त है बर्ड्स का मीट। इसी से आप देख लें कि जितना वाइट मीट होता जाता है उतना महंगा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि परिंदों का गोश्त उनको पेश किया जाएगा जिसे चाहें वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब खाना भी हो गया, पीना भी हो गया, खूबसूरत महफिल भी सजी हुई है, अच्छी अच्छी सिटिंग्स भी हैं, तो साथ ही फरमा दिया बौर के वहूरुन ईन, इंसान की कमजोरी, और वो क्या कि उसको साथी चाहिए होता है। जितने भी खूबसूरत होटल के लॉन्च में आप बैठे हों, किसी भी आप खूबसूरत से खूबसूरत जगह पे बैठे हैं, समंदर के किनारे बैठे, अकेले होंगे तो क्या मज़ा आएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं और इनके लिए खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। नोट कीजिए लफ्ज़ छुपा के पे, जो चीज़ जितनी छुपती है ना उतनी खूबसूरत हो जाती है। जो औरत जितना छुपेगी ना वो उतनी हसीन होगी। हम जिस चीज़ को एक्सपोज कर देते हैं ना उसकी खूबसूरती एक तो सन रेज ले जाती है ना, एक दूसरों की निगाहें भी ले जाती हैं। इसलिए अगर हम अपने हुसन की हिफाजत करेंगे ना तो सीधी सादी शक्ल पे भी हुसन आएगा। और अगर आपको अल्लाह ने इतनी प्यारी शक्ल दी है लेकिन आपने उसको ओपन टू ऑल कर दिया तो हुसन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला वहाँ खूबसूरत हूरों को ले आएगा, वाइट, गोरी, चिट्टी होंगी, कम साल लुलु मखनून, छुपे हुए मोती। लुलु क्या होता है? पर्ल्स जो हम गोल्ड के अंदर लगवा के पहनते हैं। हाँ, छुपे हुए मोती। इतना कुछ क्यों है? हम एकदम अग्रेसिव होते हैं, और जहाँ लव्स हूर आते हैं औरतों का तो मूड ही ख़राब हो जाता है, सारी खुशी ख़त्म। वहाँ भी इनको हूरें ही मिलेंगी। तो किसी ने कहा दुनिया में जो सब्र किया होता है, वो एक मियाँ बीवी थे तो वो जले कुटे बैठे थे, कोई बात हुई तो उसने कहा जन्नत में भी तू नहीं मुझे मिलना तो फिर मैं नहीं जाता है। तो आप देखिए अल्लाह को पता है आपको उसने क्या देना है। अब लोग आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो मैं खुद ही जवाब दे दूं कि जी अच्छा जी, जन्नत में और मर्दों को तो हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? है जहन में किसी के ये सवाल है? अच्छा, मैं यहाँ एक जुमला बोलती हूँ और फिर मैं आपको एक वाक्य भी छोटा सा सुनाती हूँ, आप सब अपने ऊपर ऊपर लीजिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, आप में से भी अक्सरियत शादीशुदा होंगी, नहीं है तो उनकी हो जाएगी। लेकिन औरत होने के नाते हम में से कोई ऐसा है कि जो ये चाहे कि मेरा शौहर छूट के मुझे दूसरा मिले, दुनिया में भी इवन कि मैं इस शौहर से नहीं दूसरे से लेना चाहती हूँ या इसके साथ एक और भी रख लूँ, एक औरत की ये फितरत में नहीं है। जैसे अल्लाह एक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने ये चीज़ औरत के दिल में डाली है कि उसको शौहर भी एक ही चाहिए होता है, कोई अपनी बॉडी को शेयर नहीं करना चाहेगा, बहुत मुश्किल होता है। और जन्नत में जो मर्द मिलेंगे ना आपको, एक ही जो है वो 70 पे बारी होगा, बेहतरीन बना दिया जाएगा। थोड़ी सी आपके इंटरेस्ट के लिए सुना देती हूँ, क्योंकि ऐसी बातें तो हम सुनने आते हैं दरसों में, बाकी तो ऐसे इतनी लंबी लंबी में सुनाते हैं लोग, कि जन्नत में जो मियाँ बीवी होते हैं क्या वही चाहेंगे कि नहीं। तो इसके लिए कुरान पाक बार बार इस बात की कहते हैं, वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहरा, उनके लिए वहाँ पाकीज़ा जोड़े होंगे। तो क्या यही शौहर और बीवी जाएंगे जन्नत में? तो उसका जवाब यह है कि अगर दोनों नेक हैं तो इंशाल्लाह दोनों जन्नत में हैं, तो फिर अल्लाह ताला उन दोनों को एक साथ कर देगा अगर वो चाहेंगे। और दिलों की जो कदूरतें और कीने, ये जो हर वक्त टुपका टुपकी लगी रहती है ना, वो जन्नत से बाहर एक नहर है, नहर है हयवान, उसके अंदर गुसल दिया जाएगा। मौका मिला तो आपको आज जन्नत के स्टेप्स सुना दूंगी, नहीं तो किसी और दर्स में। तो जन्नत से बाहर एक बिल्कुल आखिरी मोड़ है, आपको पता है कि पुल सरात का लफ्ज आपने सुना होगा, पुल सरात पे लोग वो पहुंचेंगे जिनकी जन्नत और जहन्नुम का फैसला हो चुका है। ये मैदाने माक्षर है, ये पुल सरात है, ये जन्नत है, और इस पुल सरात के नीचे जहन्नुम है। जिसने जहन्नुम में जाना है वो तो सीधा नीचे, वही मिनकुम इल्लावारिदुहा, वो इधर से आएगा और गिरता जाएगा, लेकिन जिसने जन्नत में जाना है ना उसको भी इसके ऊपर से ही गुजरना है। पुल सरात का जो आखिरी कोना है ना, उसका नाम है कंतरा, काफ नून तोए राहा। कंतरा पे जन्नतियों को रोक लिया जाएगा और वहां हकूकुल इबाद के हिसाब होंगे। हाथ ठंडे होते हैं सोच के और कहते हुए, मेरे भी सारे मामले क्लियर है, लेकिन वहां रोक के सब खड़े होंगे, मेरा हिसाब मेरा हिसाब, तुमने ये किया वो किया। वहां बंदे बंदों को छोड़ेंगे तो फिर आगे जाएंगे जन्नत में, और वहां फिर एक करीब नहर है। सूरत अल अराफ में आप पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि हम छीन लेंगे, खींच लेंगे उनके दिल के कीने, जो भी दिलों में कदूरते हैं, शौहर हैं बीवी हैं, लड़ते भड़ते रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये होते ना, बास को तो वो खुजली होने लगती है लड़ने की। एक कपल है, मैं उनको जब मिलती हूँ तो हमारे करीबी लोगों में, तो जब देखो वो छु 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 छु, तो मैं उनको कहती हूँ आप लोग तो जन्नत में भी चले गए तो अब लड़ेंगे। इसी तरह एक दर्स था, इसी तरह आपके साथ हूँ, तो मैंने ऐसी कोई मिसाल दी कि हर औरत यही चाहती है कि अपने ही शौहर मिले, अल्लाह उनकी आदतें बदल देगा, अगर वो नेक होंगे ना तो वो मेल ख़त्म हो जाएगा जन्नत में जाने से पहले ही ना। तो मैंने कहा हमें से हर औरत ये चाहती है कि हमें वही शौहर मिले ना। तो बहुत बड़ी महफिल थी, तो पीछे से मुझे एक अम्मा जी का हाथ दिखा, वो मैंने कहा बीच में क्या कहना चाहती है ना, तो उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो मैंने कहा जी, कहती नहीं जी मैं बदलना बंदों के बंदों से हाँ, किसी का भी कोई लिया दिया, कोशिश करें दुनिया में माफियाँ मंगवा लें, गीबतें बुराइयाँ रिश्तेदार सभी के साथ मामले होते हैं ना। तो बहरहाल यह है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा, अल्लाह ना करे अगर शौहर जहन्नुम में चले गए, बीवी जन्नत में, या मर्तबों का फ़र्क भी हो सकता है, तो अल्लाह उस औरत को चॉइस देंगे पूरे जन्नती मर्दों में, जिस मर्द को चाहो उससे तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। और आप देखें कि हैरत की बात होती है, आज के कल्चर को सामने रखें कि अल्लाह ताला कहते हैं जवज ना हो, हूरों से भी शादियां होंगी, वो गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी, जन्नती औरतों से भी जवज ना का लफ्ज आता है, हम शादियां करेंगे। आज के कल्चर पे लात पड़ती है ना, लिविंग टुगेदर और जज्बात के हाथों मारे हुए हैं, और पता नहीं जिंदगी का मकसद ये है कि एक बस किसी से ताल्लुक बन जाए, और आज उससे और आज उससे बने। जन्नत में भी ये सारे मामले लीगल मामला होंगे, और इसी का ऑपोजिट, अगर बीवी जो है वो जहन्नुम में चलेगी, मर्द उधर है तो उसको उधर दिया जाएगा। बाकी रह गया हूरों का इश्यू, तो ही हूरें जन्नती औरतों की गुलाम होंगी। आप कहते हैं ना हमारा क्या बनेगा, वो हमारी खिदमत करेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये सवाल किए गए थे, तो आपने कहा कि दुनिया की औरत से हूर को क्या निस्बत है, इनका मुकाम उनसे आला होगा, वो तो मशीन है, जैसे ये माइक है काम कर रहे है ना, ये हमने रखा हुआ कर, हूरों ने हूरे एक मखलूक है अल्लाह की, जैसे हमारे दिल लुभाने के लिए कोई फानूस लगा हुआ है, कोई कुछ है कोई कुछ है, ये ब्यूटी होती है ना, तो हूर भी कोई ऐसी चीज ही है बस खिदमत करने के लिए। असल जो इंसानी जज्बात होते हैं ना वो औरत और मर्द के होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औरतें भी जन्नत में ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हदीस में आता है कि अदना दर्जे के जन्नती को दो औरतें औरतों में से मिलेंगी, और बाकी जितनी अल्लाह जो दे। इस इश्यू को इतना एक्सप्लॉयट कर दिया गया कि इसकी ब्यूटी ख़त्म कर दी।